यहाँ से दोबारा इब्राहिम का तस्करा, और बेशक हमने इब्राहिम को उनकी रुश्त इससे पहले ही दे दी थी, और हम तो उसको जानने वाले थे। क्या हुआ था जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, मा हाजिह तमासील, ये क्या मूर्तियाँ हैं, ये क्या एक इमेजिनरी थिंग्स हैं, अंतुम लहा के फुन, जिनके साथ तुम बैठे हुए होते हो। हुज्जत देखिए बुत परस्तों पर, यानी इतमाम हुज्जत होती है आयत 53 से 64। यहाँ आपको हज़रत इब्राहिम का किस्सा एक और एंगल में दिख रहा है। अब ये वो हिस्सा है जिसमें आप देखेंगे कि इब्राहिम किस जुर्म की पादाश में आग में डाले गए। कोई सियासी नारा नहीं था, कोई जिहाद और दावत की बातें नहीं थी, कुछ नहीं, लेकिन ज़ात बिरादरी पे चोट पड़ती थी। अब वो अजदाद के तौर तरीके और उनके बनाए हुए खुद साख्ता दीन के ऊपर चोट पड़ती थी। आप इनका तर्जुमा जाकर पढ़िए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, कहने लगे कि बस आप ऐसे वैसे चलिए, हम तो आपको देखना ही नहीं चाहते, आपने हमारे बुतों को तोड़ दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। देखिए तौहीद परस्त का यही बड़ा जुर्म है कि वो अल्लाह को मानता है और एक की बात करता है। और आगे आप देखेंगे कि आग हज़रत इब्राहिम के लिए गुलिस्तान बनती है आयत 65 से 70 में, जब उन्होंने ये सब कुछ कर लिया। सुम्मा नुकिसु अला रुसिम, दलील के आगे झुके, उनको एकदम समझ आया कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं सके। फिर इन अना आ गई, ईगो आ गई सामने, और हज़रत इब्राहिम मुस्तकिल उनको तबलीग कर रहे हो, उफ़िल्लकुम, उफ़ तुम पे और जिनकी तुम इबादत करते हो। अब तो क्या वक़ालु, हर्रिकुहु, पकड़ो इसको, जला दो, वंसुरु, और मदद करो, आलिहतकुम। नोट करिए इस जुमले को, इलाह कौन है जो हमारी मदद करता है, और इनके झूठे इलाह वो थे जिनकी मदद ये कर रहे हैं। आप देखेंगे कि लोग बुतों के आगे खाना रखते हैं, आज भी कब्रों में जो बुजुर्ग हैं लोग उनके नाम पे चढ़ावे चढ़ाते हैं, हालांकि हमारा क्या मामला है, इयाक नअबुदु वइयाक नस्तईन। इला तो वो होते हैं जो आपकी मदद करे, ना कि आप उसकी मदद करने लगे। और अल्लाह तला की रहमत जोश में आती है, कुल ना या ना रुकूनी बरदम व सलामा, हमने कहा है आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा, किस पे, इब्राहिम पे, व रादु भी, उन्होंने एक इरादा किया और एक इरादा हमने भी कर दिया। उनका इरादा क्या था, व रादु भी कई दन, मकर का इरादा था, हमने क्या किया, फजाल ना हुमुल अक्सरीन, हमने उनको बैंक करप्टेड कर दिया, अक्सर सबसे बड़ी डिग्री। क्या पता चला कि जो आग अल्लाह के नाम पे जलती है वो बंदे को नहीं जलाती, और सिर्फ ठंडी नहीं गई बर्दन, फिर तो माइनस पे चला जाता टेम्परेचर, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम गर्मी से नहीं तो सर्दी से तकलीफ महसूस करते। वस्सलाम अला इब्राहिम। क्या पता चला कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके खिलाफ कुछ करना चाहे वो नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। और रिवायात में आता है कि इब्राहिम कहते हैं कि जो आग वाले दिन थे वो ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, क्योंकि अल्लाह से सलाम आता है, फरिश्तों से आता है। अब देखिए पीछे हज़रत यूसुफ़ को कुएं में डालने की बात हुई, वो वहाँ भी खुश थे, इनको आग में डालने की बात हुई। आगे अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में डाल दिया, नबी सल्लम को गारे सौर में भेज दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे दिया या समंदरों में से निकाल दिया। ये एक ही कहानी है, आज भी ऐसा ही है। दूसरों को लगेगा कि आप मुश्किल में हैं और आप कहेंगे इट्स माई ऑनर, लोग कहेंगे आपको इस वक्त नहीं, हाय आप थक नहीं गए, हाय अभी ये है वो, आप कहते बता भी कुछ नहीं, क्योंकि सलामन, सलामती का वादा आज भी है। तो क्या पता चला, अगला हिस्सा बहुत ही अहम है, 71 से 73, जो गुमराहों से कटता है अल्लाह उसे सालेहीन से जोड़ देता है। अल्लाह करे कि हमें ये बात समझ आ जाए। देखिए आप दो चीज़ों में पाँव नहीं रख सकते, चलती ट्रेन में एक पाँव हो और एक नीचे हो तो तबाही मस्ट है, कश्ती में एक पाँव और एक बाहर हो नहीं होगा, दो कश्तियों का सवार हमेशा गिरता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जब उन्होंने ये सब कुछ किया, हज़रत इब्राहिम ने कहा मैं तुम्हारे अंदर नहीं रहूँगा, व नजई ना हुआ लू तनी अर्दिल्लती बारक नफ़ीखा लिलआलमीन, कि हमने इब्राहिम को आग से निजात भी दी। अब इतना बड़ा मंजर उन्होंने देखा, क्या बड़ा मिरेकल, आज दुनिया में कोई आग में जल डाला गया हो और निकल आए बिल्कुल सही सालम, तो लोग तो उसको उठाकर दुनिया की बड़ी बड़ी किताबों में लिख दें। ये सब देखकर भी हिदायत नहीं मिली, तासुब, पिछला इल्म और बाप दादा के तौर तरीके, लेकिन अल्लाह ने इब्राहिम से कब छोड़, ये था वो वक्त जब इब्राहिम को हिजरत करनी थी, लूत अलैहिस्सलाम के साथ निकल गए। अब जब ये सब हुआ, वहबना लहु इसहाक व याकूब, यकीन करे वक्त तो नहीं होता इस सेट में क्योंकि ये बहुत ही मुख्तसर सी तफसीर हो रही है, लेकिन सिर्फ इस आयत 72 पे चंद जुमले बोल दो ना तो मेरा ख्याल है आप में से बहुत सारों को ज़िंदगी का कोई ना कोई बड़ा फैसला करने का मौका मिले, और वो क्या है कि जब तक आप अल्लाह के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं, आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। जो सब कुछ छोड़ देता है, अल्लाह अपना सब कुछ उसको दे देता है। जो थोड़ा छोड़ता है, अल्लाह उसको थोड़ा दे देता है। और जो छोड़े भी ना और आगे से लेना चाहे, उसकी मिसाल क्या है, आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं ना, तो एक पाँव उठाते हैं तो दूसरा ऊपर आता है ना, फिर आप और ऊपर जाने के लिए फिर पाँव उठाएंगे। क्या ये हो सकता है आप कहते हैं कि पिछली सीढ़ी पे तो मैंने पाँव नहीं छोड़ना और मुझे अगली मिल जाए। हम जिंदगी में कई बार अपने अकीदे की इस आजमाइश से गुजारे जाते हैं। अल्लाह कहता है पहले छोड़ो तो सही, फिर तुम्हें दूंगा। आप बच्चे को भी एक जगह से उठाकर दूसरी तरफ कहे ना, तो वो डर रहा होता है, तो आप कहते हैं बेटा पाँव उठाओ मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। आप क्यों इतना सोचते हैं? अल्लाह कहता है कि आप कदम तो उठाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जब भी अल्लाह के रास्ते पे आएंगे ना, शुरू में आजमाइश होंगी, कुछ दिखता ही नहीं। हजरत मूसा मिस्र से गए तो क्या दिख रहा था? समंदर में जब लाठी डाली, उधर क्या दिख रहा था? तवक्कुल, मेरा रब मुझे गिरने नहीं देगा। अब देखिए कि वो रब जो परिंदों को दरख्तों की टहनियों पर रातों को सोने में गिरने नहीं देता, मछलियों को डूबने नहीं देता दरियाओं में समंदरों में, क्या वो आपको मुझे छोड़ देगा? बात यह है कि हमारा अल्लाह पर यकीन तो हो। इसीलिए फिर अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम को अब बेटे और पोते की खुशखबरियाँ दे के कहा, अब सारे नेक होंगे। तो हिजरत और कुर्बानियों के बाद ही खैर मिलती है। अल्लाह ताला खैर कर के इस रास्ते में कुर्बानियाँ करने वालों को कभी ज़ाया नहीं करते। क्या आप और मैं ज़ाया करते? 1 रुपया कोई आपके ऊपर लगाए ना, तो आप 10 दफ़ा सोचते हैं किसने क्यों लगाया, अच्छा मैं इस पे कैसे लगाऊं, अच्छा इसने मुझे ये दिया मैं उसको ये दे दूं। दुनिया में ये चलता है। हम जैसे कमज़ोर इंसान किसी का हक ना रखें तो वो मालिक क्या वो हक रखेगा? आप वक्त लगाते हैं, आप माल लगाते हैं, आप स्किल्स लगाते हैं, आप घर खोल देते हैं, आप औलादों को लाके पेश कर देते हैं, आप अपनी सारी स्किल जो टैलेंट अल्लाह ने आपको दिया है वो अल्लाह को दें, तो क्या नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ही ऐसा है कि वो कहेगा अच्छा ले लो इनसे, और उसको तो आपकी मेरी ज़रूरत भी नहीं है? ये तो बहुत बड़ी ऑनर है। तो जो गुमराहों से कटता है, अल्लाह उसे सालेहीन से जोड़ता है। फिर आगे उनकी कुछ खूबियों का तذکرہ है, और इसके बाद फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के इनामात 74 से 75 है। अल्लाह ने उनके तذکرے के साथ क्या फरमाया, वलूतन आतैनाहु हुक्मं व इल्मा। हमने लूत को हुक्म से मुराद हिकमत और इल्मन इल्म व नजैना, और हमने निजात दी उसको उस बस्ती से कि जहाँ रहने वाले खबीस काम करते थे, क्योंकि ये फासिक कौम थी, हदों से बड़ी भी कौम थी। फिर हमने उनको दाखिल कर दिया अपनी रहमत में और वो सालेहीन में थे। क्या पता चला कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जिस बुरे काम की लत पड़ चुकी थी, अल्लाह ने उससे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जैसे खूबसूरत इंसान को आज़मा लिया। लेकिन आप देखिए, एक शख्स, एक मर्द भी कल क़यामत के दिन इनके साथ नहीं होगा, क्योंकि इनकी कौम का मर्ज़ ही ये था। लेकिन क्या नहीं था कोई साथ इनके तो ये नाकाम हो गए? नहीं, आप काम करते जाइए, नतायज जो भी मिलेंगे अल्लाह ताला आपसे राजी होगा। फिर उसके अगला नाम है हज़रत नूह का। हज़रत नूह पर अल्लाह ताला की रहमत 76 77। व नूहन इस्नादा, और वो नूह जब उन्होंने पुकारा इससे पहले, फिर हमने उनकी बात कबूल की, यानी उनकी पुकार को कबूल किया और निजात दे दी उनको और उनके घर वालों को। मिन कर्बिल अजीम, ये कौन सा कर्ब था? अपने इर्द गिर्द शिर्क होता देखना। याद रखिए कि एक तौहीद वाला, अल्लाह से प्यार करने वाला, कभी अपने इर्द गिर्द गुनाहों को और शिर्क को देखकर मुतमईन नहीं रह सकता। अभी जो मैंने आपको वाक़या बताया है, इस तरह के 20 ही वाक़यात मेरे पास पहुँचते हैं। दुनिया के चारों तरफ से लोग अपनी अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि कैसे बंदा खुश रहे इन मुल्कों में जाकर। और लोग कहते हैं कि डॉलर तो कमा लिए, औलादें खो गई, घर तो बन गए लेकिन कर्ज़ों में डूब गए। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। और अल्लामा इकबाल ने आज से कितने साल पहले बातें की थी कि आप अपने खंजर से ये तहजीब खुदकुशी करेगी। आज बिल्कुल उसकी प्रैक्टिकल सूरत है। लेकिन हम अपने ऊपर देखें तो आप 18 20 साल से लेकर, मेरा ख्याल है 70 80 साल के लोगों को देखिए, एड़ियाँ उछाल कर जाना चाहते हैं। क्या सोचते हैं, वहाँ तो परियाँ उतरी होंगी, वहाँ तो डॉलर लगे होंगे, ये होगा वो होगा। जहाँ भी जाएँ अल्लाह के बंदे बन के रहें, इधर बेअमल हैं तो इधर भी खैर कोई नहीं, और उधर जाके अगर आप मुबल्लिग बनकर अपने आप को पेश कर देते हैं, अल्लाह उसकी भी बड़ी कदर करेगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चुना, और अल्लाह ताला कहते हैं कि वो कौम उनसे फ़ायदा ना उठा सकी, हमने इनकी तो मदद कर दी और उस कौम को डबो दिया। फिर फिर आगे आयत 78 से 82 में हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की नायात, बाप और बेटा। यहाँ नोट कर लीजिएगा कि ये दोनों नबी अपने अंदर एक ख़ास खूबी रखते हैं। पीछे आमतौर पे जितने भी अंबिया का तذکرہ हम पढ़ते हैं ना, तो वह आजमाइशों में थे, यानी वो नबलूकुम बिशर्री वाली बात थी। इनका क्या, नबलूकुम बिलखैर। दौलत भी थी, हुकूमत भी थी, नबूवत भी थी। और यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नाते से किस्सा बयान करके अल्लाह ताला ने यह बता दिया कि अल्लाह अम्बिया कराम को भी आजमाइशों में डाल देता है ताकि उनका टैलेंट खुलकर सामने आए। फिर इस आयत में 79 हज़रत सुलेमान को फहम दिए जाने की बात हुई है। पता क्या चला कि कभी बाप को अल्लाह ताला ज़्यादा कोई नेमत दे देता है तो कभी बच्चों को भी ज़्यादा खूबी दे देता है। फिर अगली आयत में हज़रत दाऊद की खूबियाँ हैं कि वो ज़िरहें बनाया करते थे। फिर आप देख रहे हैं अल्टरनेट है, यानी मैं आपको जो इंजॉय कराना चाह रही हूँ ना, एक आयत हज़रत दाऊद की खूबियाँ, तो अगली सुलेमान, फिर अगली दाऊद, फिर सुलेमान, यानी बाप बेटा बाप बेटा। किसी को एक खूबी, किसी को एक खूबी थी, अल्लाह ताला की ये इनायात थी, और इसमें अल्लाह देखना चाहता था कि उनको क्या मिलता है। एक जुमला लिखिए कि आजमाइशों में, तकलीफ़ों में बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं, नेमतों में फंस जाते हैं। नमाजें भी तभी बोझल होती हैं जब घर बड़ा हो जाए और दौलत ज़्यादा हो जाए। बहरहाल आगे एक और नबी का जिक्र है, हज़रत अय्यूब के सब्र का अजर, 83-84। वायूब इसनादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, शदीद तकलीफ़ में अल्लाह को पुकारा। ये है एक बंदा मोमिन की बात। आप देखिए कि ज़िंदगी में जितनी भी बीमारियां आज तक आई हैं, उसका एक ही खुलासा है क्या, इस आयत को आप देखें ना, तो इसमें मांगा कुछ नहीं है। अन्नी मसनी या दुर्रु, ये अपनी कैफियत बयान की गई, अपना हाल बयान किया है, और साथ ही कह दिया वंतर हम रहमीन, और आप रहम वाले हैं। हम होते हैं ना तो साहब के ला के, अल्लाह ताला ये हो गया अब आप ठीक कर देना, वैसे कर देना। आप देख रहे हैं कि अल्लाह की बड़ाई का तस्करा और अपने जालिम होने का या अपनी कमज़ोरी का तस्करा अल्लाह को अच्छा लगता है, और साथ ही सब्र करने वालों को अल्लाह ताला की रहमत अता की जाती है। इसका तस्करा 85 से 86 में है। व इस्माईल व इदरीस व ज़ल किफ़ली कुल्लुम मिनस्साबिरीन, यानी ऐसे लग रहा है कि एल्बम के सफ़े पलटे जा रहे हैं और एक से एक नबी का तस्करा करके अल्लाह कहते हैं हमने इन सब को अपनी रहमतों में डाल दिया क्योंकि ये सब सालेहीन थे। और आगे हज़रत यूनुस का नाम, उनकी फरियाद रसी की बात है, 87 से 88। वज़न्नून ज़हब मुग़ादिबा, और वो मछली वाला, देखो जब वो गज़ब में, गुस्से में भरा हुआ निकला और उसने सोचा कि नहीं हम कुदरत पाएंगे उस पर। फ़नादा फिज़ुलुमात, फिर उसने पुकारा, ये भी नहीं बल्कि फ़नादा, बस फिर पुकारती अंधेरों में, क्या, अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। आप देखिए कि ये जुमला जिसके बाद अल्लाह करे फस्तजबना लहू, फिर हमने उसकी दुआ कबूल की और हमने उसको निजात दी उस गम से, और हम इसी तरह निजात देते हैं मोमिनों को। आप कभी इस जुमले पे गौर करें ना, तो तीन बातें हैं इसमें, ला इलाहा इल्ला अंता एक बात, सुभानका दूसरी बात, और इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। आप सिर्फ इसकी जाकर अरबी में शरह पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाता है कि आपका अल्लाह से ताल्लुक़ कितना है। आप पे जब तकलीफ़ आती है तो किस किस को ज़िम्मेदार गर्दानते हैं, या इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। हमारे कल्चर में अमूमन ये कलेमा दूसरों से पढ़वाया जाता है, बीमारी आ गई सबको बुलाओ कलेमा पढ़िए, और एक ख़ास तरीका भी है, 1 लाख समथिंग, 1.25 लाख। दो तीन सवाल मेरे जहन में हमेशा आते हैं, आपके सामने भी रख देती हूँ। थोड़ी सी अरबी तो हमने भी जान ली, ये आयत क्या कह रही है, ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह आप जैसा कोई नहीं, सुबहानक आप तो पाक है, इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, देखिए अपनी तरफ इशारा करें, इन्नी मैं ज़ालिम हूँ। अब बीमारी आई किसी पे, अपनी दोस्तों को बुलाती है, दोस्तें क्या पढ़ रही हैं, ये कहना चाहिए ना कि अल्लाह मेरी दोस्त ज़ालिम है। यानी सिर्फ मैं आपको शऊर बेदार करने के लिए और एक रस्मी रिवाजी दीन जो हमारे पास आ गया उसका एक हिंट दे रही हूँ। आपका जो दिल करता है आप कीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप बिल्कुल इसको करवाइए। 1.25 लाख दफ़ा पढ़ा, कैसे पढ़ा, किस कस्बी में पढ़ा, किधर थी गुठलियाँ, किधर थे बादाम, नहीं, आप एक दफ़ा सिर्फ, वन टाइम, आप एक दफ़ा ये इकरार तो कीजिए कि अल्लाह आप सबसे बड़े हैं, और मैं ही जालिम हूँ। ये बीमारी जो आई है, ये परेशानी आई है, ये मुकदमा आया है, ये दुख हम है ना, ये मेरे किसी जुर्म का नतीजा है। आप देखिए कि अल्लाह आपको इंशाल्लाह बगैर दूसरों में रुसवा किए, शर्मिंदा किए, उस मुश्किल से निकाल देगा। फिर आप देखिए कि किस चीज़ से निजात मिली, तीन अंधेरों से। कौन से अंधेरे थे? रात का अंधेरा था, समंदर का अंधेरा था, मछली के पेट का अंधेरा था। क्या ये निजात सिर्फ हज़रत यूनुस को मिली थी? नहीं, हदीस ले लीजिए, मिशकातुल मसाबीख में 2292 है, फिर अहमद और तिरमिज़ी में भी मौजूद है, यानी बड़ी फेमस रिवायत है। हज़रत साद इसके रावी हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यूनुस जब मछली के पेट में थे तो उन्होंने इन अल्फाज के साथ दुआ की, ला इलाह इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई मुसलमान शख्स किसी मामले में इन अल्फाज के साथ जब दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल की जाती है। तो आप खुद से, मैं आपको इसकी दावत दूंगी कि जब भी बीमारी है, परेशानी है, बच्चे पे, आप पे, माल पे, घर में, ख़ानदान में, कोरोना है, एक महंगाई आ गई, फ्लड आ गया, दिल पे नज़र रखते हुए शऊर से ये आयत एक दफ़ा भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह को बड़ा बनाइए, सुबहानक, इसमें आपकी मोहब्बत झलके, और साथ ही इन्नी कुन तुम्हें ज़ालिम, इसमें अपने आप पे नज़र कीजिए, अल्लाह ताला सुनेगा। आप देखिए जब कुरान पाक पूरा पढ़ते हैं ना, 6000+ आते हैं, वो प्लस जो है ना उसमें कुछ इज़्तिराब है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए, हम 6000+ कह देते हैं। आप पढ़ते हैं 1,25,000, कितने कुरान बनेंगे? जाके आज ज़रब और तकसीम करके देखिएगा, इतना भारी कलमा, इतना भारी वजीफ़ा करने के बाद खुशू कितना होगा। कुरान भी नहीं लोगों ने पढ़ा होता, और जो पढ़ने वाले हैं उनका पता नहीं अपना कुरान भी ठीक है कि नहीं, तो क्या पता चला कि अल्लाह ने इतने बोझ नहीं डाले। खुद पढ़िए, हर वक्त पढ़िए, उठते में पढ़े, बैठे में पढ़े, और फरिश्ते गिन रहे हैं। गुना जब बेहिसाब करते हैं तो कलेमात को भी बेहिसाब पढ़िए, और इंशाल्लाह अल्लाह पे जो गुमान रखेंगे वही होगा। और एक बार इस वक्त हम सब इस नीयत से पढ़ते हैं कि हम सबका कोई भी गम, कोई बीमारी, कोई अटका हुआ काम, और मैं तो कहूँगी कि अल्लाह हमारे दीन के सारे प्रोजेक्ट्स को सामने रख कर कहती हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अपनी रहमत से, अपनी जनाब से, अपनी खैर से वो काम पूरे करा दे, और हमसे फिर कबूल भी कर ले, कमियों को दूर कर दे, बेशियों को दूर कर दे, क्वालिटी को अच्छा कर दे, तू हमें हमारे नफ्स के हवाले ना कर दे। ये आपको तरीका सिखा रही हूँ, आप दिन रात ऐसे बातें किया करें अल्लाह से कि अल्लाह मेरा ये काम कर दे, तू बस बड़ा है, मैं तो छोटी हूँ। रस्मी रिवाजी, और फिर दही बल्ले, और फिर उसके बाद पिज़्ज़ा, और खाने पका के खिलाना, घर वाले को तो पता भी नहीं होता कि अंदर मेरे लिए मेहनत क्या हो रही है। तो ये कोई तनकीद नहीं है, मैं सिर्फ शौर को बेदार कर रही हूँ, उसके बाद भी जिसका जो दिल करता है वो करे, कोई मसला नहीं। लेकिन एक बार आप ख़ुद भी तो बैठ कर सोचे कि क्या मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह की बात को सुनकर मानने वाली भी हूँ कि नहीं। फिर उसके बाद आगे देखिए, हज़रत ज़करिया की दुआ आ रही है, 89 से 90 है, पीछे भी हम सूरत मरियम के शुरू में पढ़ चुके, व ज़करिया इस नादा रब्बहू, और ज़करिया जब उसने पुकारा अपने रब को, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़ना, और वारिस तो बेहतर तू ही है। अल्लाह कहते फस्तजबना नाउ, एंड जिसको आप कहते हैं ना अभी और इसी वक्त, अल्लाह ने कबूल कर लिया। वहबना लहू यहया, और उनको अता किया यहया, और उनकी बीवी को भी ठीक किया। अब यहाँ जो चीज़ मैं आप में से उन लोगों को जो माशाल्लाह दिन रात अल्लाह के रस्तों में भागते हैं उनको इशारा दे रही हूँ, पीछे मैंने कहा था लेकिन आज सामने आयत आ गई है, बुढ़ापे में बशताल रासु शैबा, और मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, पीछे याद आ रही है आपको आयत सूरत मरियम की, बुढ़ापा कमज़ोरी और बीवी भांज थी। अल्लाह कहते हैं नंबर एक, ज़करिया की इस दुआ पे हमने उनको याह्या दिया, यानी नाम भी हमने ही रखा। दूसरी बात, वसलखना लहू ज़ौजहू, उनकी बीवी का इलाज करा दिया। आमतौर पे कहते हैं कि मीनोपॉज के बाद बच्चा पैदा नहीं हो सकता, वो भी गुजर गया। वो औरत जो अपनी जवानी में बच्चा पैदा नहीं कर सकी, उसको 70, 80, 90 साल की उम्र में औलाद कैसे मिली बताइए? वसलखना लहू, अल्लाह ने करवा दिया। डॉक्टर जो काम कर सकते हैं, जो हकीम कर सकते हैं, अल्लाह के लिए तो कुन है। अच्छा वजह, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, वो अल्लाह के रास्तों में, वो खैरात में, नेकियों में भाग दौड़ करते थे। नंबर एक उनकी नेकी, व यदूना रगबा व रहबा, और उन्होंने हमको पुकारा रगबत से और रहब से, खौफ से, और अगली उनकी खूबी वकानु लना खाशीन। ये चार काम आप कर लीजिए, उसके बाद ये दुआ आपकी कबूल अल्लाह कर ले, बड़ी अल्लाह के लिए छोटी बात है। अल्लाह में नेकियों में भाग दौड़ वाला बना दे। आज अमूमन लोग कहते नहीं नेकियों में जाएंगे तो ये हो जाएगा वो होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि बंदा अल्लाह के रास्ते में निकला हो, अल्लाह नामुमकिनात को उसके लिए मुमकिन कर देता है। और यहाँ हम दुआ भी कर लेते हैं, अल्लाह जो भी अभी तक औलाद की नेमत उज़्मा से महरूम है उनको ईमान वाली सेहत वाली औलाद दे, जो नेकियों में उनके सब भाग दौड़ करें। फिर इसके बाद आगे 91 आयत में हज़रत मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम के एजाजात हैं, वल्लती अहसनत फरजहा। देखिए हज़रत मरियम का जहाँ भी तारुफ आया ना, उनकी पाक दामनी की बात है। कुमारी लड़कियों के लिए हज़रत मरियम एक रोल मॉडल है, और शादीशुदा औरतों के लिए कौन है ये हम पढ़ेंगे 28वें पारे के एंड पे। लेकिन यहाँ इतनी बात समझ लीजिएगा कि जो औरत अपनी इज्जत की हिफाजत करी, अल्लाह उसी को एक आजमाइश में डाल रहा है। इससे पता चलता है कि अल्लाह साहिब कुन फयाकून ने जो मर्ज़ी करे, असल में अल्लाह उनको और उनके बेटे को एक निशानी बनाना चाहता था। अंबिया सूरत अंबिया में अब अंबिया के तस्करे के बाद अब एंड पे 92 से 93 में पैगाम क्या मिला, तमाम अंबिया का एक ही मकसद था और वो क्या था, बंदगी रब, कि खुद भी रब के बंदे बन जाओ और दूसरों को भी इसकी दावत दे दो। और एंड पे कुल्लु इलैना राजियून, ऊपर आप देख रहे हैं अना रब्बुकुम फाबुदून, मैं ही तुम्हारा रब हूँ बस मेरी बंदगी करो, ये पैगाम था हर नबी का। और एंड पे कुल्लु कुल्लु इलैना नाराजियून, जो नहीं उनकी बात मानते, जिन्होंने फ़िरक़े बना दिए, उनकी बात को पीछे डाल दिया, अल्लाह कहते हैं ये सब हमारी तरफ रुजू करेंगे, इनको हमारी ही तरफ पलट कर आना है। तो आयत 92 से 93 में क्या देखा कि तमाम अंबिया का एक ही मकसद था और वो क्या था कि अल्लाह की बंदगी करो। तो आज आपका मेरा भी दीन की बात करने और सुनने के दौरान यही काम होना चाहिए। इसके बाद आयत नंबर 94 से 95 में अच्छे अमाल करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, यानी ये दुनिया वन टाइम अपॉर्चुनिटी है नेकियां करने की। फमें यामल मिनस सालिहात, और जो कोई अमल साले करेगा चाहे और वो मोमिन भी होगा, फला कुफरान लिसाजी ही, उसकी कोशिशों की नाकदरी नहीं की जाएगी। और हम लिख रहे हैं क्या पता चला कि आज नेकी कर लीजिए, कल उसकी जजा पाने के लिए इंशाल्लाह हम तैयार रहेंगे। फिर क़ुरबे क़यामत की एक निशानी का तस्करा है, याजूज माजूज की यलगार की सूरत में आयत 96, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज। इससे पीछे आपने सूरह कहफ़ में देखा था कि ज़ुल्करनैन ने एक दीवार बनाई थी याजूज माजूज को रोकने के लिए, क़ुरबे क़यामत ये दीवार टूट जाएगी, वहुम मिन कुल्ली हदबी यंसिलून, और वह ऐसे भागेंगे। हदीस में बहुत कुछ आता है कि दरियाओं के दरिया पी जाएंगे, यानी ये बहुत सारे हैं, बल्कि एक रिवायत से यहाँ तक आता है कि सहाबा कराम ये बात सुन के घबरा गए थे कि हर हज़ार में से 999 जहन्नुम में जाएंगे और एक जन्नत में। तो अल्लाह के नबी ने उनको तसल्ली दी थी कि याजूज माजूज भी इसी गिनती में आते हैं। तो बहरहाल इस पर हम पीछे थोड़ी बात कर चुके। आगे है 97 से 100, माबूदाने बातिल मुशरिकीन के साथ जहन्नुम में चलेंगे। जाहरी बात है कि दुनिया में जिन लोगों के साथ मज़ा आता था फिर वहाँ भी तो उन्हीं को साथ रखा जाएगा। फिर उसके बाद आयत 101 से 103 में नेक लोगों के लिए बशारते हैं, और वो क्या है कि उनको हुस्ना भी मिलेगा और ऐसे लोग जहन्नुम से दूर रखे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको वहाँ एक खटका तक नहीं लगेगा। आप सोचिए कि ज़िंदगी में इंसान की ख्वाहिश होती है कि मुझे कोई ना सताए, और सबसे बड़ी बात है वतलक्काहुमुल मलाइका, फरिश्ते उनको लेने आएंगे। जैसे जब जान जाती है ना, जब मोमिन की नान निकल रही होती है, नेक बंदे की जब जान निकलती है तो फरिश्ते उसको हाथों हाथ लेते हैं, जैसे एक दुल्हन का कोई वेलकम करे, कोई किसी बहुत दिल पसंद मेहमान को वेलकम करे। और साथ ही क्या कहेंगे, हा ज़यौमुकुमुल लज़ी कुंतुम तुअदून, इट्स योर डे। आप कहते हैं ना आज तो जी आपका दिन है, जो आप कहेंगी वही होगा। हाँ, तो प्यार से मोहब्बत से उसकी रूह को निकाला जाता है। अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो कि मौत के वक्त हमें ये बशारतें मिलें। फिर आयत 104 में अल्लाह ताला की बड़ाई और कुदरत का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है, ये मजमून है, यानी अल्लाह ताला आपकी मेरी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड कुदरत रखता है। और आयत 105 से 106 में ज़मीन के वारिस बिल आखिर नेक लोग होंगे, यानी हम सारी ज़िंदगी चीज़ें जमा करते रहते हैं, लेकिन एंड पे कौन? अल्लाह ताला सब चीज़ों का वारिस भी होगा। और इससे एक और बड़ी खुशखबरी मिलती है कि अच्छे काम करते रहिए, चाहे आपको नतायज ना भी मिले, लेकिन आफ्टर ऑल एंड जो होगा वो नेक लोगों का ही अच्छा होगा। आयत 107 से 112 में नबी सल्लम के हवाले से शिर्क के इम्कानात का सद्देबाब है। आप देख रहे हैं कि सूरत में अम्बिया कराम का मिशन बताने के बाद अब जिस माहौल में अल्लाह के नबी मौजूद थे, वहाँ जो शिर्क फैला हुआ था उसको ख़त्म करने की बात करके बहुत ही प्यारी आयत पे सूरत पूरी होती है। काला रब्बिहकुम बिलहक्की व रब्बुनर्रहमानुलमुस्तानुअलामा तसिफून। क्या पता चला कि आप अपना काम करते रहें, क्योंकि वमा अरसलनाक इल्ला रहमतलिलआलमीन। ये बड़ी मारूफ आयत है, इसका नंबर आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए, यानी हमने आपको जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा।